भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 10 देवताओं तथा असुरों के बीच संग्राम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, यद्यपि असुर तथा दैत्य पूरे मनोयोग तथा श्रम के साथ समुद्र मंथन में लगे थे, किंतु भगवान वासुदेव के भक्त न होने के कारण वे अमृत नहीं पी सके। हे राजन, समुद्र मंथन का कार्य पूरा कर लेने तथा अपने प्रिय भक्त देवताओं को अमृत पिला लेने के बाद भगवान ने उन सबके देखते देखते वहां से विदा ली और गरुड़ पर आसीन होकर अपने धाम चले गए। देवताओं की विजय देखकर असुरगण उनके श्रेष्ठतर ऐश्वर्य को सहन न कर सके, अतः वे अपने अपने हथियार उठाकर देवताओं की ओर दौड़ पड़े। तत्पश्चात अमृत पीने से उत्तेजित देवताओं ने, जो सदैव नारायण के चरण कमलों की शरण में रहते हैं, असुरों पर प्रत्याक्रमण करने के लिए युद्ध की मनोवृत्ति से अपने विविध हथियारों का प्रयोग किया। हे राजन, देवताओं तथा असुरों के मध्य क्षीर सागर के तट पर घमासान युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध इतना भयावह था कि इसके विषय में सुनने से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस युद्ध में दोनों ही दल भीतर ही भीतर अत्यंत क्रुद्ध थे। वे शत्रुतावश एक दूसरे पर तलवारों, बाणों तथा नानाविध अन्य हथियारों से प्रहार करने लगे। शंखों, तुरहियों, डोलों, देरियों तथा डमरियों की आवाजों के साथ ही हाथियों, घोड़ों तथा रथ पर चढ़े और पैदल सिपाहियों से निकलती ध्वनियां कोलाहलपूर्ण थी। उस युद्ध भूमि में रथी अपने विपक्षी रथियों से, पैदल सेना विपक्षी पैदल सेना से, अश्वारोही विपक्षी अश्वारोहियों से तथा हाथियों पर सवार सैनिक विपक्षी हाथी सवार सैनिकों से भिड़ गए। इस प्रकार समान पक्षों में युद्ध होने लगा। कुछ सैनिक ऊंटों पर, कुछ हाथियों पर, कुछ गधों पर, कुछ सफेद मुंह वाले और लाल मुंह वाले बंदरों पर, कुछ भागों पर और कुछ सिंहों पर सवार होकर लड़ने लगे। इस प्रकार वे सब युद्ध करे जा रहे थे। हे राजन, कुछ सैनिक गीदों, किलहों, बगुलों, भाजों तथा भास पक्षियों की पीठ पर बैठ कर लड़े। कुछ ने विशाल मत्स्यों, तिमी को भी निगलने वाली तिमी गलों की पीठ पर, कुछ ने सर्पों की पीठ पर, तो कुछ ने भैंसों, गैंडों, गायों, बैलों, बन गायों तथा अरुणों की पीठ पर सवार होकर युद्ध किया। अन्य लोगों ने सियारों, चूहों, छिपकलियों, खरहों, मनुष्यों, बकरों, काले हिरनों, हंसों तथा सुअरों की पीठ पर बैठकर युद्ध किया। इस प्रकार विकृत शरीर वाले पशुओं सहित जल थल तथा आकाशचारी पशुओं की पीठ पर बैठी दोनों सेनाएं आमने सामने होकर आगे बढ़ रही थी। हे राजन, हे महाराज पांडु के वंशज, देवता तथा असुर दोनों ही के सैनिक छत्रों, रंग बिरंगी झंडियों तथा बहुमूल्य रत्नों एवं मोतियों से बनी मूठ वाले छातों से अलंकृत थे। वे मोर पंख से बने तथा अन्य पंखों से सुशोभित थे। ऊपरी तथा अधो वस्त्रों के वायु में लहराने के कारण सैनिक अत्यंत सुंदर लग रहे थे और चमचमाती धूप में उनकी ढालें, उनके गहने तथा तीक्ष्ण स्वच्छ हथियार आंखों को चौंधिया रहे थे। इस तरह सैनिकों की टोलियां जलचरों के समूह से भरे हुए दो सागरों के समान प्रतीत हो रही थी। उस युद्ध के लिए सुविख्यात सेनापति विरोचन पुत्र महाराज बलि विहायक नामक अद्भुत वायु यान पर आसीन थे। हे राजन, सुंदर ढंग से सजाया गया यह वायु यान मय दानव द्वारा निर्मित किया गया था और युद्ध के लिए सभी प्रकार के हथियारों से युक्त था। यह अचिंत्य तथा अवर्णनीय था। यह कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता था। इस वायुयान में एक सुंदर छाते के नीचे बैठे तथा सर्वोत्तम चमरों से पंखा झले जाते हुए एवं अपने सेना नायकों से घिरे महाराज बलि इस प्रकार लग रहे थे मानो शाम को चंद्रमा उदय हो रहा हो और सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो। महाराज बलि को चारों ओर से असुरों के सेना नायक तथा अधिपति घेरे थे। वे अपने अपने रथों पर सवार थे। इनमें निम्नलिखित असुर थे: नमुची, शंबर, बाण, विप्रचिति, अयोमुख, विमुर्दा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इल्वल, शकुनी, भूत संताप, वज्रदंष्ट, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघधुंदुबी, तारक, चक्रधक, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमी, त्रिपुरादिक, मय, पुलोम के पुत्र काले तथा निवात कवच, ये सारे असुर अमृत के अपने अपने भाग से वंचित रह गए थे। उन्होंने केवल समुद्र मंथन का श्रम उठाया था। अब वे तुरों के विरुद्ध लड़ रहे थे और अपनी सेनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सिंह गर्जना के समान कोलाहल किया और जोर से अपने अपने शंख बजाए। बलभीत अर्थात इंद्रदेव अपने रक्त पिपासु प्रतिद्वंदियों की यह स्थिति देखकर अत्यंत कुपित हुए। एक ऐसा हाथी जो कहीं भी जा सकता है और जो छिड़कने के लिए जल तथा सूरा को संचित रखता है, ऐसे ऐरावत हाथी पर चढ़कर इंद्र ऐसा लग रहा था मानो उदयगिरी से जहां जल के आधार हैं सूर्य निकल रहा हो। देवतागण स्वर्ग के राजा इंद्र को घेरे हुए थे। वे नाना प्रकार के यानों पर सवार थे और झंडों तथा आयुधों से सज्जित थे। उपस्थित देवताओं में वायु, अग्नि, वरुण तथा विभिन्न लोकों के अन्य शासक तथा उनके पार्षद थे। देवता तथा दानव एक दूसरे के सम्मुख आ गए और मर्मभेदी वचनों से एक दूसरे को धिक्कारने लगे। तब वे निकट आकर जोड़ी जोड़ी में आमने सामने लड़ने लगे। हे राजन, महाराज बलि इंद्र से, कार्तिकेय तारक से, वरुण हेति से तथा मित्र प्रहेति से भिड़ गए। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मय दानव से, त्वष्टा चंबर से तथा सूर्य देव विरोचन से लड़ने लगे। अपराजित देवता ने नमुची असुर के साथ तथा दोनों अश्विनी कुमारों ने वृक्ष पर्वा के साथ युद्ध किया। सूर्य देव महाराज बलि के 100 पुत्रों से भिड़ गए, जिनमें बाण प्रमुख था। चंद्रदेव ने राहु से लड़ाई की, वायु देव ने पुलोमा से तथा शुंभ और निशुंभ ने अत्यंत शक्तिशाली माया भद्रकाली नामक दुर्गा देवी से युद्ध किया। हे अरिंदम महाराज परीक्षित, शिवजी ने जंब से तथा विभा वसु ने महिषासुर से युद्ध किया। इलवल ने अपने भाई वातापी सहित ब्रह्मा के पुत्रों से युद्ध किया। दुर्मरश कामदेव से, उत्कल मातृका नामक देवियों से, बृहस्पति शुक्राचार्य से तथा शनेश्चर नरकासुर से युद्ध में भिड़ गए। मरुतगण निवास कवच से, वसुओं ने दैत्य कालकेयों से, विश्व देवों ने पौलोमो असुरों से तथा रुद्रगणों ने क्रुद्ध अर्थात क्रोध के वशीभूत असुरों से युद्ध किया। ये सारे देवता तथा असुर लड़ने के उत्साह से युद्ध भूमि में एकत्र हुए और अत्यंत बलपूर्वक एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे सब विजय की कामना करते हुए जोड़े बनाकर लड़ने लगे और तेज बाणों, तलवारों तथा भालों से एक दूसरे को बुरी तरह से मारने लगे। उन्होंने बुशुंडी, चक्र, गदा, रिष्टि, पटिश, चक्ति, उल्मुख, प्रास, प्रश्वद, निस्त्रिंश, भाला, परिद, मुद्गर तथा बिंदीपाल नामक हथियारों से एक दूसरे के सिर काट डाले। हाथी, घोड़े, रथ, सारथी, पैदल सेना तथा सवारों सहित विविध प्रकार के वाहन टुकड़े टुकड़े हो गए। सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन तथा टांगें कट गई और उनके झंडे, धनुष, कवच तथा आभूषण छिन्न भिन्न हो गए। भूमि पर देवताओं तथा असुरों के पांव तथा रथों के पहियों के आघात से आकाश में तेजी से धूल के कण उड़ने लगे और धूल के बादल छा गए, जिससे सूर्य तक का सारा बाह्य आकाश चारों ओर से ढक गया। किंतु जब धूल कणों के पश्चात रक्त की बूंदें सारे आकाश में फुहार की तरह उठने लगी, तो धूल के बादलों का आकाश में मंडराना बंद हो गया। युद्ध के दौरान रणभूमि वीरों के कटे सिरों से पट गई। उनकी आंखें अब भी घूर रही थी और क्रोध से उनके दांत उनके होठों से लगे हुए थे। इन छिन्न सिरों के मुकुट तथा कुंडल बिखर गए थे। इसी प्रकार आभूषणों से सज्जित तथा विविध हथियार पकड़े हुई अनेक भुजाएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी। और हाथी की सूंडों जैसे अनेक टांगे तथा झांगे भी इसी तरह बिखरी हुई थी। उस युद्ध भूमि में शीश रहित अनेक धड़ उत्पन्न हो गए थे। वे प्रेत तुल्य धड़ अपने हाथों में हथियार लिए पड़े हुए तीरों की आंखों से देखकर शत्रु सैनिकों पर आक्रमण कर रहे थे। महाराज बलि ने तब 10 बाणों से इंद्र पर तथा 3 बाणों से इंद्र के वाहन ऐरावत पर वार किया। उन्होंने 4 बाणों से ऐरावत के पांवों की रक्षा करने वाले 4 घुड़सवारों पर आक्रमण किया और 1 बाण से उसके चालक पर। इसके पूर्व की बलि महाराज के बाण स्वर्ग के राजा इंद्र तक पहुंचे, बाणों के चलाने में पटु इंद्र ने हंसते हुए एक अन्य प्रकार के अत्यंत तीक्ष्ण बल नामक बाण से उन्हें काट डाला। जब बलि महाराज ने इंद्र के दक्ष सैन्य कार्यकलापों को देखा तो वे अपना क्रोध रोक न सके। उन्होंने शक्ति नामक एक दूसरा हथियार ग्रहण किया जो महान अग्निपुंज की भांति ज्वलित हो रहा था, किंतु इंद्र ने इसे बलि के हाथ से छूटने के पूर्व ही खंड खंड कर दिया। तत्पश्चात बलि महाराज ने एक एक करके भाला, प्रास, तोमर, रिष्टि तथा अन्य हथियार चलाए, किंतु वे जो भी हथियार लेते थे उन्हें महान इंद्र तुरंत ही खंड खंड कर देते थे। हे राजन, तब बलि महाराज अदृश्य हो गए और उन्होंने आसुरी माया का सहारा लिया। तब देवताओं की सेना के सिरों के ऊपर माया से उत्पन्न एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से दावा अग्नि से जलते हुए वृक्ष गिरने लगे। उससे पत्थर की कुल्हाड़ी जैसी तीक्ष्ण धार वाले पत्थर खंड भी गिरने लगे, जिससे देवताओं के सैनिकों के सिर चिकनाचूर हो गए। देवताओं के सैनिकों पर बिच्छू, बड़े बड़े सर्प तथा अन्य अनेक विषैले पशुओं के साथ साथ सिंह, बाघ, सुअर तथा बड़े बड़े हाथी गिरने लगे और हर वस्तु को चकनाचूर करने लगे। हे राजन, तब कई तो मानव बक्षी नर और मादा असुर जो पूर्णतया नग्न थे और अपने हाथों में त्रिशूल लिए थे, काट डालो, छेद डालो के नारे लगाते हुए प्रकट हुए। तब आकाश में प्रबल वायु से प्रताड़ित घनघोर घटाएं प्रकट हो आई। वे गंभीर गर्जना करती हुई जलते कोयलों के अंगारे बरसाने लगी। महाराज बलि द्वारा उत्पन्न की गई अत्यंत संहारक अग्नि देवताओं के सभी सैनिकों को जलाने लगी। यह अग्नि तेज बहती हवाओं के साथ उस तावर्तक अग्नि जैसी प्रतीत हो रही थी जो प्रलय के समय प्रकट होती है। तत्पश्चात हवाओं के प्रचंड जकोरों से शुभ समुद्री लहरें तथा भंवर सबकी आंखों के सामने एक भीषण बाढ़ के रूप में चारों ओर प्रकट हो आए। जब ऐसे मायावी कार्यों में 10 अदृश्य असुरों द्वारा युद्ध में इस तरह का जादुई वातावरण उत्पन्न किया जा रहा था तो देवताओं के सैनिक उद्विग्न हो गए। हे राजन, जब देवताओं को असुरों के कार्यों का निराकरण कर पाने का कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने ब्रह्मांड के सत्रष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण मनोयोग से ध्यान किया और वे तुरंत ही प्रकट हो गए। नव विकसित कमल की पंखुड़ियों सदृश्य आंखों वाले भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे थे और गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल फैलाए हुए थे। वे पीत वस्त्र धारण किए कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी से सुसज्जित एवं अमूल्य मुकुट तथा कुंडल पहने अपनी आठों भुजाओं में विविध आयुध धारण किए देवताओं को दृष्टि गोचर हुए। जिस प्रकार स्वप्न देखने वालों के जगते ही स्वप्न के भय दूर हो जाते हैं, उसी तरह युद्ध भूमि में भगवान के प्रवेश करते ही उनकी दिव्य शक्ति से असुरों की जादूगरी से उत्पन्न माया विलीन हो गई। निसंदेह भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य सारे संकटों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जब सिंह पर आरूढ़ काल नेमी दैत्य ने देखा कि गरुड़ पर आरूढ़ भगवान युद्ध क्षेत्र में है, तो उसने तुरंत अपना त्रिशूल निकाल लिया और उसे गरुड़ के सिर पर चलाया। किंतु तीनों लोकों के स्वामी भगवान हरि ने तुरंत ही उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी हथियार से उस शत्रुकाल नेमी को उसके वाहन सिंह समेत मार डाला। तत्पश्चात भगवान ने माली तथा सुमाली नामक दो शक्तिमान असुरों को मारा। उन्होंने अपने चक्र से उनके सिर काट दिए। तब एक अन्य असुर माल्यवान ने भगवान पर आक्रमण किया। उसने अपनी नुकीली गदा से सिंह की भांति गर्जना करते हुए अंडों से उत्पन्न पक्षीराज गरुड़ पर आक्रमण किया। किंतु आदि पुरुष भगवान ने अपने चक्र का प्रयोग करते हुए उस शत्रु के सिर को भी काट दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।